नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश के सबसे अमीर उद्यमी गौतम अडानी ने मंगलवार को कहा कि अडानी समूह भारत में निवेश से ना तो कभी पीछे हटा है और ना ही कभी निवेश को धीमा किया है, क्योंकि समूह अपनी वृद्धि को देश की आर्थिक प्रगति से जोड़कर देखता है। अडानी ने अपने समूह की कंपनियों के शेयरधारकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नए ऊर्जा कारोबार में 70 अरब डॉलर के निवेश की पहले की गई घोषणा से भारत को कच्चे तेल के आयातक की जगह हरित हाइड्रोजन का निर्यातक बनाने में मदद मिलेगी। अडानी समूह के मुखिया ने कहा, भविष्य में हमारे भरोसे एवं यकीन को दर्शाने वाला सबसे अच्छा सबूत भारत के हरित बदलाव को संभव बनाने के लिए किया जाने वाला 70 अरब डॉलर का हमारा निवेश है। समूह की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना चाहती है। इसके लिए वो हर साल 2 गीगावाट सौर क्षमता विकसित करने के लिए 20 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। बाकी राशि का इस्तेमाल हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए विनिर्माण सुविधाएं बनाने में किया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई, जिसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। बोली प्रक्रिया मंगलवार को सुबह 10 बजे से शुरू हो गई, शाम 6 बजे तक बोली लगाई जा सकती है। नीलामी प्रक्रिया का आगे भी जारी रहना आने वाली बोलियों और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर निर्भर करेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज भी बोली लगाने वाली है। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,00,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम की बिक्री आरक्षित मूल्य के आसपास ही होगी। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता साफ हो पाएगा। बजाज ऑटो का चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ मामूली गिरावट के साथ 1,163 करोड़ रुपए रहा। पुणे स्थित कंपनी ने इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,170 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने कहा कि चिप की कमी की वजह से उसकी बिक्री प्रभावित हुई, जिससे मुनाफा कम रहा है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय बढ़कर 8,005 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7,386 करोड़ रुपए थी। तिमाही के दौरान कंपनी की कुल बिक्री 7% घटकर 9,33,646 इकाई रह गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10,06,014 इकाई रही थी। समीक्षाधीन तिमाही में एकल आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ 1,173 करोड़ रुपए रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,061 करोड़ रुपए रहा था। वॉल्वो कार इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक SUV XC40 रिचार्ज को पेश किया है। इसकी शोरूम कीमत 55.9 लाख रुपए है। ये भारत का पहला स्थानीय स्तर पर असेंबल लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन है। वॉल्वो कार इंडिया के प्रबंध निदेशक ज्योति मल्होत्रा ने मंगलवार को बयान में कहा, हमने XC40 रिचार्ज को अपने बेंगलुरु कारखाने में असेंबल किया है। इससे भारत और यहां के उपभोक्ताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पता चलता है। स्वीडन की कार कंपनी XC40 रिचार्ज को केवल ऑनलाइन माध्यम से बेचेगी। इसकी बुकिंग 27 जुलाई से शुरू होगी। ग्राहक वॉल्वो कार इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन 50,000 रुपये का भुगतान करके इसकी बुकिंग कर सकेंगे। वॉल्वो 2007 में भारतीय बाजार में उतरी थी। देश भर में इसकी 22 डीलरशिप हैं। गृह मंत्रालय ने एयर इंडिया के मनोनीत मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैंप बेल विल्सन को सुरक्षा संबंधी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उनके लिए एयरलाइन की बागडोर संभालने का रास्ता साफ हो गया है। टाटा सन्स ने 12 मई को विल्सन को एयर इंडिया का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की थी। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को PTI भाषा से कहा कि गृह मंत्रालय ने विल्सन को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। इस बारे में एयर इंडिया के प्रवक्ता से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। नागर विमानन नियमों के तहत एयरलाइन के मुख्य अधिकारियों के नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी जरूरी है। विल्सन स्कॉट एयर की पूर्ण अनुषंगी सिंगापुर एयरलाइंस के CEO रहे हैं। उन्होंने कैनेडा, हांगकॉन्ग और जापान में एयरलाइन कंपनियों के साथ भी काम किया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन ऑडियो मंच पॉकेट FM के साथ साझेदारी कर ऑडियो बुक श्रेणी में कदम रखा है। मंगलवार को कंपनी की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत फ्लिपकार्ट अपने 40 करोड़ से अधिक ग्राहकों को पॉकेट एफएम के जरिए विशिष्ट एवं अधिकृत ऑडियो बुक मुहैया कराएगी। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग ऑडियो बुक सुनते हैं। फ्लिपकार्ट में दैनिक उपभोग के सामान, घरेलू एवं सामान्य व्यापार की कारोबार प्रमुख कंचन मिश्रा ने कहा कि महामारी के दौरान ऑडियो बुक को प्रमुखता मिली है। इस साझेदारी से लेखकों को ऑडियो बुक के सहायता से अपने मंच पर अपने काम का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। पॉकेट एफएम ने आधिकारिक तौर पर मार्च 2022 में अपना ऑडियो बुक मंच शुरू किया था। विज्ञप्ति के मुताबिक पॉकेट एफएम हर महीने 1.20 लाख से अधिक ऑडियो बुक बेचती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।